ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय शुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। तस्मात् दैवोपपन्नेन मुन्येनापि धर्मवित् संतुष्ट अर्हर कुर्यात् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन मुन्येनापि धर्मवित् संतुष्टो अर्हर कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन मुन्येन एनापि धर्मवेद् संतुष्टो अर्हर कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन मुन्येनापि धर्मवित् संतुष्टो अर्हर कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन मुन्येनापि धर्मवेद् संतुष्टो अर्हर कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन मुन्येनापि धर्मवेत् संतुष्टो अर्हर कुर्यान् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। तस्मादैवोपपन्नेन मुन्येनापि धर्मवेत्
लाइट चलाइए।
माताजी तस्मात् अतेव दैवोपपन्नेन भगवत कृपा से सरलता से प्राप्त। मुनियन्नेन जो घी से तैयार तथा भगवत भगवान को अर्पित भोजन से अपि निसंदेह धर्मवित धर्म में बढ़ा चढ़ा संतुष्ट अत्यंत सुखपूर्वक अह अह दिन प्रतिदिन कुर्यात् करे नित्य नैमित्तिकी नियमित तथा कभी कभी क्रिया कर्तव्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद अतएव जो वास्तव में धर्म के अभिज्ञ हैं और बेचारे पशुओं के अत्यधिक पशुओं से अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करते, उसे दिन प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैमित्तिक तथा किन्हीं विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से जो भी सरलता से उपलब्ध हो जाए उसी के द्वारा संपन्न करना चाहिए। बोलिए आप वृत्ति करेंगे। जो अतएव जो वास्तव में धर्म के अभिज्ञ हैं और बेचारे पशुओं से अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करते, उसे दिन प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैतिक तथा किन्हीं विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से जो भी सरलता से उपलब्ध हो उसी के द्वारा करना चाहिए। तात्पर्य धर्मविद शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो धर्म के वास्तविक प्रयोजन को जानता है। जैसा कि भगवद गीता के 18 अध्याय श्लोक 66 में बताया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म को समझने में कृष्ण भावना भावित होना सर्वोच्च अवस्था है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह भक्त की अर्चना विधि को संपन्न करता है। वह भक्त की भक्ति होगा ना, भक्ति होना चाहिए। वह भक्ति की अर्चना विधि को संपन्न करते, इसमें भक्त लिखा है। चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, वह अपने पास भगवान का अर्चा विग्रह रख सकता है या संभव हो तो स्थापित कर सकता है। और इस तरह राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के अर्चा विग्रहों की पूजा घी से बना भोजन अर्पित करके कर सकता है। फिर वह इस पवित्र किए हुए प्रसाद को पितरों देवताओं तथा अन्य जीवों को नैतिक कर्म की भांति प्रदान कर सकता है। कृष्ण भावना मृत आंदोलन के सारे केंद्रों में अर्चा विग्रह पूजन का कार्य अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न किया जाता है। जहां अर्चा विग्रह को अर्पित करने के बाद भोजन को उच्च कोटि के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में, यहाँ तक कि सामान्य लोगों तक में वितरित कर दिया जाता है। इस तरह के संपन्न किए गए यज्ञ से पूर्ण संतुष्टि मिलती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्य नित्य ऐसे दिव्य कर्म करते रहते हैं। अतएव हमारे इस आंदोलन में पशुओं के वध का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुवाद फेवा अतएव जो वास्तव में धर्म से अभिज्ञ हैं, ये ठीक है अभिज्ञ, ये सब ठीक है। और बेचारे पशुओं से अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करते, उसे दिन प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैमित्तिक तथा किसी विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से जो भी सरलता से उपलब्ध हो जाए उसी के द्वारा संपन्न करना चाहिए। इस श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि दैव योग से जो भी मिल जाए उसी से अपना नित्य नैमित्तिक पूजा संपन्न करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन माना जाता है, लेकिन वह निर्धारित है कौन सा प्राणी किस पर आश्रित है। ऐसे तो जो हम लोग कंदमूल या जो लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि साग सब्जी में भी जीव होते हैं, लेकिन वो मनुष्य के लिए निर्धारित है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वो भोजन निर्धारित है कि हम साग सब्जी अन्न फल दूध ले सकते हैं। लेकिन उसको बिना अर्पित किए हुए अगर कोई खाता है तो पाप है, पाप खाता है। जो कुछ भी बिना भगवान को अर्पित किए खाना वो पाप कहा जाता है। जैसे कल आप लोग ने सुना, कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यीशु मसीह जो है जब मंदिर मस्जिदों गिरजाघरों में यहूदी लोग पशुओं की बलि देते थे, तो पशुओं की बलि दे करके और उसको खाते थे। तो यीशु मसीह को देखकर उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ पशु हिंसा देख करके। तो हर प्राणी जो है भगवान का अंश है, हर प्राणी में परमात्मा विषय भगवान भी निवास करते हैं। ये शरीर जो है एक तरह से मंदिर कहा गया, शरीरम हरि मंदिरम, इसमें भगवान रहते हैं। चाहे पशु का शरीर हो चाहे कोई भी प्राणी, अंडज पिंडज स्थावर जड़, उसमें भगवान परमात्मा रूप से हर प्राणियों में निवास करते हैं। भगवान हर जगह रहते हैं सर्वगत, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हो, चाहे अणु हो या परमाणु हो, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, चींटी से भी छोटे छोटे जीव हैं त्रस रेणु, उसे भी सूक्ष्म जीव हैं जिनको माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख पाते हैं, उसमें भी आत्मा परमात्मा है। ऐसे कहा जाता कि सर्वगत भगवान या आत्मा हर जगह है, जिसको हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यहां तक कि पत्थर में भी जीव रहते हैं। कभी कभी पत्थर को भी तोड़ा जाता है तो उसमें भी कृमि निकलते हैं। मतलब आत्मा हर जगह है, और आत्मा है मतलब परमात्मा भी है। परमात्मा ही हर प्राणियों में आत्मा के रूप में निवास करते हैं, या परमात्मा विस्तार करके हर प्राणियों में आत्मा के रूप में निवास करते हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा दोनों साथ में रहते हैं। परमात्मा के बिना आत्मा का कोई सत्ता नहीं है, इसलिए परमात्मा के साथ में आत्मा या परमात्मा ही आत्मा के रूप में अपना विस्तार करके हर प्राणी को चेतना प्रदान करता है, इसलिए भगवान को विश्व आत्मा कहा जाता है। भगवान हर प्राणियों में निवास करते हैं, विश्व आत्मा, जैसे हम लोग देह आत्मा हैं, देह में है, लेकिन भगवान विश्व के हर कण कण में निवास करते हैं। तो किसी भी प्राणी को मारना मतलब भगवान को नुकसान पहुंचाना है, कि हर प्राणी जो है भगवान का चलता हुआ मंदिर है। जैसे मंदिर बना करके भगवान के अर्चा विग्रह को स्थापित किया जाता है, लेकिन शरीर में भगवान स्वतः ही स्थापित हैं परमात्मा रूप से, चाहे कोई भी प्राणी हो, निकृष्ट प्राणी भी है तो उसमें भी भगवान है, मतलब वो भी भगवान का मंदिर है। ये मंदिर को कितना पवित्र रखा जाता है, तो भगवान हर प्राणी में है, मतलब मंदिर है, मंदिर माने भगवान का निवास स्थान है। तो किसी भी प्राणी को मार करके जो लोग भोजन प्राप्त करते हैं तो पाप है, जीव हिंसा कहा जाता है। जीव हिंसा जो है पाप है, किसी भी प्राणी को मार करके खाना, इसलिए शास्त्र में जीव हिंसा को निषेध किया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो मीट ईटिंग, मांसाहार निषेध, मांस भक्षण करना सबसे बड़ा पाप है। तो जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जीने के लिए कुछ आहार की जरूरत है, तो अन्य प्राणियों को मारकर भोजन करते हैं, तो उनको इस विधि के अनुसार छोड़ना चाहिए मांस भक्षण करना। इस श्लोक में कहा गया कि हर व्यक्ति को देव योग से भोजन मिलता है, हर जगह शाक सब्जी कंद मूल फल हर जगह विद्यमान है, अन्न है हर जगह उपलब्ध है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां खाद्यान्न नहीं। अगर मांस खाना आदमी छोड़ दे ऐसा नहीं कि मर जाएगा, खाने के लिए अन्य बहुत सारे पदार्थ हैं, इस भूमि से अनेक उत्पादन होते हैं, जैसे फल है, साग सब्जी है, अनाज है, अनेक प्रकार के कंदमूल हैं जिस पर हम जीवन यापन कर सकते हैं। अतः जो वास्तव में धर्म के अभिज्ञ हैं और बेचारे पशुओं से अत्यधिक ईर्ष्या नहीं करते, उसे दिन प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैतिक तथा किन्हीं विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से उनको यज्ञ संपन्न करना चाहिए। यज्ञ क्या है? जो भी मिल जाता है उसको भगवान को अर्पण करना। यज्ञा शिष्टा सिना संतो मुचंते सर्व किल विषयी, जो भी भोज्य पदार्थ है उसको भगवान को अर्पित कर देने से वो यज्ञ हो जाता है। या यज्ञ भगवान का एक नाम है, भगवान को अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोजन करने से हमारा जो कर्म बंधन है छूट जाता है। जो भगवान को अर्पित करके जो भोजन करता है वो समझिए कि यज्ञ कर रहा है। यज्ञ क्या है? भगवान को अर्पित करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, सर्वधर्मान, जो तथाकथित धर्मों को छोड़ करके परम धर्म में स्थित हो जाता है और भगवान के शरण में आश्रित होकर भगवान के निमित्त कर्म करता है। मत कर्म कृत, भगवान कहते हैं मेरे निमित्त कर्म करो, मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं वो भगवान को अर्पित करके खाएं। भोजन से जीव का और भगवान का बड़ा संबंध है। कोई अपने भोजन को अगर सुधार लेता है या भोजन को भगवान को बिना अर्पित किए नहीं खाता है, जो कुछ भी मिलता है भगवान को अर्पित करके खाता है, तो समझिए कि वो वही वास्तविक यज्ञ कर रहा है। अर्चा विग्रह को जो भी भोजन मिलता है दैव योग से, अर्चा विग्रह को अर्पित करके अगर खाता है तो यज्ञ का उच्छिष्ट खाता है। यज्ञ उच्छिष्ट, और उच्छिष्ट खाने से उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, वो सब पापों से मुचंते सर्व किल विषय, सब पाप से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सरल विधि के द्वारा हम भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं। अर्चा विग्रह की पूजा करना बहुत सरल है। कोई लक्ष्मी नारायण, सीताराम, जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे घरों में पहले शालिग्राम की पूजा होती थी, तो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिलता है, जो उपलब्ध है, उसी के द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान की पूजा करना बहुत सरल है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि तुम मुझे लड्डू, रसमलाई या मालपुआ ही भोग लगा सकते हो, जो आपकी शक्ति हो, जो उपलब्ध हो। कभी कभी ऐसी अवस्था होती जहां कुछ उपलब्ध नहीं है, तो वहां जल से भगवान की पूजा कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, तो फूल के द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा कर सकता है। कोई बहुत महादरिद्र है तो पानी तो हर जगह है, पानी से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो यम, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ये नहीं कहे कि तुम इतना वस्तु के द्वारा मेरी पूजा कर सकते हो। भगवान की पूजा में कोई भी सम्मिलित हो सकता है, चाहे बिल्कुल गरीब हो। एक पत्ता तुलसी का कहीं भी उपलब्ध है, कहीं भी तुलसी का एक पत्ता भगवान को दे सकता है। पत्रम पुष्पम, एक फूल कहीं से भी ले सकता है, किसी के भी बगान से ले सकता है। एक भक्त मंगल आरती में आते थे, अभी वो दिखाई नहीं देता है, तो 4 बजे वो फूल लेकर के आता था। तो 5-6 महीना पहले तो मैं कहा कि इतना सवेरे आप फूल कहाँ से ले आते हैं, दुकान भी तो बंद है। तो बोला कि किसी के हाथ में तोड़ लेता हूँ। तो मैं कहा कोई अगर एक आपको डांटेगा तो वॉचमैन नहीं पकड़ता है, अरे कभी कभी पूछ लेता हूँ, नहीं तो ऐसे तोड़ लेता हूँ, चोरी करके ले आता हूँ। तो 4 बजे ले आता था, 4 बजे 4:15 बजे लाकर यहाँ रख देता था। तो आपको फूल तो हर जगह कहीं भी किसी भी पेड़ से, उद्यान से, जंगल से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो चोरी भी कर सकते हैं। भगवान के लिए अगर चोरी भी करेंगे और पकड़े भी जाएंगे, अगर कहेंगे कि भगवान के लिए मैं ये फूल लिया हूं, तो कोई उसमें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भगवान की पूजा जो है कोई भी कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत सारे वृक्षों में फल आते हैं, समय समय पर ऋतु में फल आते हैं, उसी फल से पूजा कर सकते हैं, या जंगली फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा कर सकते हैं। अर्चा विग्रह पूजन का कार्य अत्यंत सुंदर ढंग से हमारे मंदिरों में चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कान के मंदिरों में सारे केंद्रों में अर्चा विग्रह पूजन का कार्य अत्यंत सुंदर ढंग से चल रहा है। जहां अर्चा विग्रह को अर्पित करने के बाद भोजन को उच्च कोटि के ब्राह्मणों में, वैष्णवों में तथा सामान्य लोगों में बांट दिया जाता है। तो भगवान की अर्चा पूजा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पांच साधन मुख्य हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बा श्री विग्रह, श्री विग्रह की पूजा करना श्रद्धा से, और जो उपलब्ध है उसी वस्तु के द्वारा दैव योग से। सत्श्लोक में है तस्मा दैवो पपन्नेना, दैव योग से जो आपको मिल जाए, अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई चीज प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना नहीं, भगवान कहते हैं स्वतः जो मिल जाए, स्वाभाविक बिना प्रयास किए, उसी से अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। एक बार महाविष्णु महाराज कह रहे थे कि स्वतः मिले वो दूध बराबर, आ मांग दिया तो पानी, आ वह है रक्त बराबर जब होए खींचा तानी। स्वतः मिले स्वाभाविक जो मिल जाए आपको, जैसे लोग साधु लोग कहते हैं आकाश वृत्ति, जैसे आकाश से पानी गिरता है, स्वाभाविक वर्षा ऋतु में पानी गिरता है, आकाश वृत्ति मैंने स्वाभाविक ऐसे कुछ मिल जाए जो भी आपको। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने दैव योग से मिलता है, खाने के लिए, पहनने के लिए, उसको भगवान को अर्पित करके अगर खाता है और अधिक है तो उसको वितरण करके, या जो भी अर्चा विग्रह को अर्पित होता है उसको वितरण करके भक्त लोग खाते हैं, प्रसाद वितरण करके। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, प्रसाद वितरण करना चाहिए। बड़े बड़े उत्सवों में प्राय लाखों लोगों को प्रसाद दिया जाता है, अर्चा विग्रह को चढ़ा करके खूब प्रसाद वितरण किया जाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उत्सव जैसे बड़े बड़े उत्सव होते हैं मंदिरों में, हमेशा प्राय उत्सव होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, अर्चा विग्रह पर बहुत मात्रा में राइस है, दाल है, सब्जी है, हलवा है, पूरी है चढ़ाया जाता है, और फिर वैष्णवों में, भक्तों में या सामान्य लोगों में वितरण किया जाता है। यही कली युग का सबसे बड़ा यज्ञ है। यह अर्चा विग्रह को कीर्तन के द्वारा, हरिनाम कीर्तन के द्वारा और प्रसाद के द्वारा, भगवान कली युग में दो चीज से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, भगवान की पूजा हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। कली युग में सबसे बड़ी पूजा है हरिनाम कीर्तन के द्वारा, हरिनामी केवलम, इसी पूजा के द्वारा भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान को प्रसाद अर्पित करना और उस अर्पित प्रसाद को सबको वितरण करना, यहां तक कि पशुओं को भी, चंडाल को भी, कुत्ता को भी, बिल्ली को भी वो देना चाहिए, हर प्राणी को वितरण करना चाहिए। इस तरह से बड़े बड़े यज्ञ उत्सव में प्रसाद और हरिनाम की महत्व। श्रील प्रभुपाद जी, जैसे कल सच्चिदानंद प्रभु बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी विदेशों में हरिनाम के द्वारा और प्रसाद वितरण के द्वारा लोगों को, हिप्पी लोगों को आकर्षित कर लिए। केवल कीर्तन करते थे महामंत्र का और अर्चा विग्रह को प्रसाद चढ़ा करके वितरण किए। श्रील प्रभुपाद जी कोई ज्यादा विद्वत्तापूर्ण प्रवचन नहीं किए, कोई बहुत साहित्यिक, व्याकरणी, मीमांसक, न्यायिक ऐसा बड़ा बड़ा दर्शन नहीं बताए हैं, सरल प्रवचन किए हैं। हमेशा नाम जप के विषय में चार नियम बताए हैं और प्रसाद चढ़ाना और भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करना, ये सरल विधि बताए हैं, लेकिन सरलता से सबको आकर्षित कर लिए। केवल भगवान को प्रसाद अर्पित करके वितरण करते थे और नाम की महिमा का प्रचार किए। इसके द्वारा लोगों को वश में कर लिए। इसलिए भागवत में कहा गया कि न यत्र जग्गेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवई ससेव्यतम, जहां ऐसे अर्चा विग्रह के सामने कीर्तन नहीं होता है, प्रसाद अर्पण नहीं होता है, यज्ञ उत्सव नहीं होता। न यत्र जग्गेश मखा महोत्सवा, प्राय मंदिरों में रोज उत्सव होता है, रोज अर्चा विग्रह को खूब सुंदर ढंग से सजाया जाता है, ये उत्सव है। इसलिए प्रभुपाद जी मंदिरों में प्राय कह कि रोज उत्सव हो, अर्चा विग्रह को खूब सुंदर ढंग से सजाया जाता है, फिर कीर्तन भक्त लोग करते हैं खूब महामंत्र का कीर्तन, और फिर प्रसाद वितरण होता है, यही उत्सव है और भगवान के महिमा का गान करना। जहां भगवान के महिमा का कीर्तन का ये नहीं होता वहां नहीं रहना चाहिए कहा गया है। इस कौन सा प्रसंग में देवता लोग कह रहे हैं ना इसको, तो देवता लोग कहते हैं कि न यत्र जग्गे श्लोक है, कैसे पहला लाइन कैसे है, ऊपर वाला लाइन कैसे है, जहां भगवान की कथा सरिता नहीं बहती हो, न यत्र भगवान की कथा सरिता जहां नहीं बहती हो, जहां भगवान के भक्त निवास नहीं करते हो, वो जगह में नहीं रहना चाहिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां वैकुंठ भगवान का भी नाम है, जहां भगवान जो वैकुंठ में निवास करते हैं ऐसे भगवान, या ऐसे भगवान की कथा जो विगत कुंठ, भगवान की कथा की महिमा सुनने से सारी कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, दैहिक दैविक भौतिक जो त्रिताप है सब नष्ट हो जाता है। भगवान की जो कथा सरिता है उसका स्पर्श करने से, उसको श्रवण करने से जो ताप है, त्रिताप जो कुंठा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नष्ट हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति मृत्यु को भी पराजित कर देता है, मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए जहां भगवान की कथा सरिता न बहती हो, या जहां भगवान की पवित्र नदियां जैसे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु का ये नदियां नहीं हैं, जिस देश में पवित्र नदियां बहती हैं, जहां भगवान के मंदिरों में अर्चा विग्रह की सेवा होती है, जहां भगवान के नाम का खूब कीर्तन होता है और प्रसाद वितरण होता है, वो जगह बहुत पुण्य कहा गया है, बहुत पुण्यवान माना जाए। जहां गंगा है, सरस्वती है, नर्मदा है, जमुना है, या भगवान के लीला भूमि है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, वो जगह बहुत पुण्य माना जाता है। वो जगह में रहने से ही व्यक्ति जो है स्वाभाविक को धर्म का अनुशीलन करने लगता है, या भगवान में उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो श्रद्धा से अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, कीर्तन करते हैं। एक भक्त थे, भक्तमाल में कथा है कि ये भक्त थे राजस्थान के, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो जब उनकी शादी के लिए लोग आते थे तो कहे कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो घर में अतिथियों साधुओं की सेवा करके उनको खिला करके तब खाए। वो व्रत लिए थे कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे जबकि एक आदर्श गृहस्थ है कि जो भी भोजन बनाता है उसको भगवान को अर्पित करके फिर साधु वैष्णव में अतिथियों में वितरण करके तब खाता है। तो आदर्श भक्त थे, राजस्थान के थे। तो जब उनका विवाह हुआ तो पति पत्नी प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में भोजन बनाते थे, और अर्चा विग्रह को अर्पित करके साधुओं में वैष्णवों में वितरण करते थे, तब ग्रहण करते थे। तो उनके पास जितनी संपत्ति थी वो धीरे धीरे बेच बेच करके धन खत्म हो गया, तो जो भूमि या जो अचल संपत्ति घर में सोना थे उसको बेच बेच करके अर्चा विग्रह को खूब भोजन अर्पित करते थे, उस भोजन को अर्पित करके प्रसाद रूप में खूब वितरण करते थे। तो उनकी जो पूंजी थी, जमा पूंजी, धीरे धीरे खर्च हो गई। जितना अचल संपत्ति था, पैतृक संपत्ति, जमीन हो, जेवरात हो, यहां तक कि पत्नी का जो गहना था, वो बेच बेच करके साधुओं महात्माओं की सेवा करते थे। बिल्कुल कंगाल हो गए। एक दिन उनके घर में बहुत साधु आ गए, साधुओं की टोली आ गई। तो घर में कुछ नहीं था, तो कहे कि साधु उनकी कैसी सेवा होनी चाहिए, साधु घर में आते हैं तो उनकी खूब सेवा होनी चाहिए, उनको प्रसाद के द्वारा उनको संतुष्ट कर देना चाहिए। तो साधु आए तो कहे कि आप लोग स्नान कीजिए। तो बाल भोग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पति पत्नी, अपने पत्नी से कहा कि ठीक है तुम ये करो, मैं जा रहा हूं, किसी कोई उपाय करता हूं, कुछ नहीं मिलेगा तो चोरी करके धन ले आऊंगा। तो जंगल के रास्ते में गए वो भक्त, जैसे जंगल से रास्ते होते हैं ना, जंगल में रोड भी होते हैं, आने जाने वाले जंगल से भी लोग आते हैं। तो एक सुनसान जंगल के रास्ते पर, चौराहे पर बैठ गए कि इधर से जो भी आएगा उसको लूट करके पैसा प्राप्त करूंगा, इसे साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। तो समय बीत रहा था, बाल भोग का समय भी बीत रहा था। भक्त बड़े चिंतित थे। उधर द्वारकाधीश देखे कि हमारा भक्त जो है साधु सेवा के लिए बहुत प्रयास कर रहा है कि कैसे भी धन प्राप्त हो, तो अपने भक्त के भाव को देखकर द्वारकाधीश रुक्मिणी जी से कहे कि चलो एक भक्त के पास चलते हैं, ये भक्तमाल में कथा है। तो रुक्मिणी जी के साथ गए जहां वो भक्त निर्जन जंगल के रास्ते पर खड़ा था। तो द्वारकाधीश पूरे ज्वेलरी के साथ, भगवान द्वारकाधीश का तो बहुत श्रृंगार होता है, हीरे के हार से, उनके कानों में सोने के कुंडल होते हैं, बहुत ज्वेलरी के साथ रुक्मिणी द्वारकाधीश गए। द्वारकाधीश कहे कि मुझे, मैं अनभिज्ञ आदमी हूं, अनजान आदमी हूं, जंगल में मुझे जंगल के रास्ते को पार कर दो। भक्त से कहे कि मुझे इस रास्ते से पार कर दो, मैं सुना जंगल में बहुत सारे चोर होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी है, आभूषण है। वो भक्त ने कहा कि आप क्या दोगे मुझे, मैं जंगल पार करा दूंगा। तो द्वारकाधीश कहे कि जो आप कहो। तो कहे कि ऐसा करो, मुझे इतना पैसा दे दो, लेकिन ये पैसा मुझे दो, मैं मेरे घर में कुछ भक्त आए हैं उनके बाल भोग के लिए मैं तैयारी कराकर आता हूं। तो द्वारकाधीश ने कुछ पैसा दिया, कुछ सोने का सिक्का, कहे कि आप लोग यहीं रहो, मैं घर देकर आता हूं। वो पैसे से अपने पत्नी को कहे कि तुम बाल भोग की तैयारी करो, फिर दोपहर राजभोग के लिए मैं और धन लेकर आता हूं। तो भक्त जो है द्वारकाधीश को जंगल में पार कराने के लिए ले जाए, ले गए जंगल। जब घना घोर जंगल में गए तो वो भक्त तो अपना जो लठ लिया था उससे दो लठ मारा द्वारकाधीश को कि बस ये सब उतार दो, जितना ज्वेलरी है तुम्हारे ऊपर सारा उतार दो। रुक्मिणी जी ने कहा कि अरे द्वारकाधीश कहे कि मुझे तो पार तो कर दो। कहे कि पार करना तो छोड़ो, तुम्हारा जान भी ले लूंगा, पहले जितना तुम्हारे पास आभूषण है सब उतार दो। वो भक्त जो है वास्तव में भक्त थे, भक्त की सेवा के लिए चोरी करने के लिए देखिए, लेकिन उनके इस कार्य से द्वारकाधीश प्रसन्न होकर आए चोरी करवाने के लिए कि चलो हमारा भक्त है, भक्त सेवा के लिए। भगवान वास्तव में अगर इस तरह से साधु सेवा में कोई रहता है तो भगवान ज्यादा उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं भक्त की सेवा से, भगवान भक्त के माध्यम से का, जैसे पीछे के श्लोक में आया था कि भगवान को कोई खिलाता है तो उतना भगवान नहीं खाते हैं जितना कि भक्त के माध्यम से खाते हैं। पीछे के अध्याय में आए थे कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के द्वारा ज्यादा खाता हूं। कोई घी के द्वारा पदार्थ बनाकर वैष्णवों को अगर खिलाता है तो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से भी ज्यादा महिमा है भक्त की सेवा की। तो भक्त पर द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए और कहे कि देखो भगवान अंत में अपना रूप माधुरी का दर्शन दिए। वो भक्त बड़ा रूप रसिक था, वास्तव में निष्काम भक्त था, लेकिन साधु सेवा के लिए साधु आए हैं तो धन कैसे भी हो धन प्राप्त करना ही है। द्वारकाधीश अंत में कहे कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो अंत में भक्त भगवान के चरण में गिर गया और कहा कि आप अब मुझे दर्शन इसी तरह मेरे द्वारा सेवा लेते रहिए। तो भगवान वहीं अर्चा विग्रह के रूप में कहे कि मेरे गोद में आ जाइए। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश उसके गोद में आ गए अर्चा विग्रह के रूप में और वही लेकर के आया। इस तरह से साधु सेवा के द्वारा, और साधु सेवा मतलब भगवान को भोग अर्पण करता था, साधु वैष्णवों को खिलाता था। प्रभुपाद जी कहते हैं सरल विधि है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। केवल भगवान के अर्चा विग्रह को आप जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको उपलब्ध है, अर्चा विग्रह को भोग लगाकर वितरण कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए। एक बार राघवेंद्र महाराज कह रहे थे कि कहीं यह नहीं कहा गया कि प्रसाद खाओ, प्रसाद वितरण की ज्यादा महिमा है, खाने से ज्यादा वितरण करने की महिमा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, वैसे प्रसाद के लिए भी कहते हैं प्रसाद वितरण करो। एक बार महाराज कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी कहे कि प्रीचिंग करो। जब प्रभुपाद जी से राधा गोविंद महाराज मिलते थे तो वृंदावन में प्रभुपाद जी कहते थे तुम प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करने नहीं गया। अगर महाराज कहे कि मैं प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी प्रीचिंग क्या होता है, प्रीचिंग का मतलब नहीं जानते थे, तो महाराज श्री कहे कि श्रील प्रभुपाद जी प्रीचिंग मतलब क्या है, मैं नहीं समझ रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे देखो प्रीचिंग का मतलब है अर्चा विग्रह को प्रसाद अर्पण करो, कीर्तन करो, कुछ गीता का भगवान का जो उपदेश है, गीता भगवान का उपदेश है उसके बारे में बताओ और लोगों को प्रसाद वितरण करो, यही प्रीचिंग है। प्रीचिंग का मतलब यही है कि अर्चा विग्रह के सामने कीर्तन करना, प्रसाद अर्पण करना और लोगों को प्रसाद वितरण करके गीता का उपदेश देना, यही प्रीचिंग है। सरल विधि है प्रीचिंग। जहां अर्चा विग्रह को अर्पित करने के बाद भोजन को उच्च कोटि के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में, यहां तक कि सामान्य लोगों तक में वितरित कर दिया जाता है, इस तरह से संपन्न किए गए यज्ञ से पूर्ण संतुष्टि मिलती है, यह यज्ञ है। बहुत लोग सोचते हैं यज्ञ मतलब बहुत बड़ा हवन बनाना, उसमें खूब आहुति देना, नहीं, कलियुग का वास्तव में यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ी आहुति है, यही सबसे बड़ी तपस्या है कि भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद का खूब वितरण हो, खास करके ब्राह्मण वैष्णव भंडारा लोग कहते हैं कि वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव भंडारा, पहले लोग वैष्णवों को ब्राह्मणों को भंडारा खिलाते थे। मुख्य रूप से आज भी वृंदावन में देखते हैं बरसाना में कि भंडारा होता है, खूब बड़ा बड़ा भंडारा आज भी होता है, उसमें साधु वैष्णवों को खूब खिलाया जाता है। यथाशक्ति लोग दान भी देते हैं, कंबल है, कमंडल है, साबुन है, यहाँ तक कि बरसाना में हम एक बार गए थे राधाष्टमी पर, तो प्राय भंडारा में निमंत्रण मिलता था, जाते थे हम लोग, तो उसमें खूब प्रसाद खिलाया जाता है और कुछ दक्षिणा भी लोग देते हैं, वस्त्र है, कमंडल है, कंबल जो कुछ भी है। तो ये वैष्णव पद्धति है, ये पहले से विधि है कि इस तरह से साधुओं को वैष्णवों को खूब खिलाना भगवान का प्रसाद, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं धर्मविद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मविद वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है जो भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करता है और जो उपलब्ध उसको अर्पित करता है और नाम जप करता है, तो वही धर्मविद है, वही भगवान को समझा है। धर्मविद शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है जो धर्म के वास्तविक प्रयोजन को जानता है, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान को आश्रित होना, और भगवान का आश्रित होकर क्या करना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीत अस्नामी प्रियतात्मनः। भगवान ने मुख्य सिद्धांत गीता में दिए हैं कि जो मुझे अर्पित करता है, श्रद्धा पूर्वक मुझे कोई अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीत अस्नामी प्रेतात्मनः, भगवान तो अस्नामी में खाता हूं। भक्त अगर भगवान को इस तरह से जो कुछ भी अर्पित करता है, जैसे मंदिरों में तुलसी दल डाल करके भगवान को जो भी भोजन अर्पित किया जाता है तो भगवान उसको खाते हैं। तुलसी दल मातेण जलम चुलके नवा, कोई एक तुलसी और थोड़ा जल भी अगर भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कहा गया कि भगवान जो है धीरो बत्ती विष्णाय, धीरो बत्ती विष्ण कैसे ऐसे लोग कहे, एक जैसे कोई व्याकरणी है, कोई व्याकरण पढ़ा है तो विष्णवे नमः कहता है, कोई विष्णाय नमः कहता है, जो नहीं पढ़ा है संस्कृत वो उच्चारण गलत भी कर देता है। जैसे उड़ीसा में कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है, कितना कितना ऐसे भी बोलते हैं। जैसे फॉरेनर लोग उनका प्रोनाउंसिएशन तो कितना कितना बोलते हैं, अरे कितना हरे कितना, लेकिन वो भाव से करे तो भगवान समझ जाते हैं। फलम उभयम तुल्यानाम भाव ग्राही जनार्दन, धीरो बत्ती विष्णाय, ये श्लोक याद नहीं आ रहा ऊपर वाला लाइन, फलम उभयम तुल्यानाम भाव ग्राही जनार्दन, भगवान समझ जाते हैं वो तो मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, भले वो कितना बोलता है, या कृष्ण कृष्ण, उड़ीसा में कृष्ण बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी कभी कभी लोग कृष्ण बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि वो मेरा उच्चारण कर रहा है। उसी तरह से अगर भाव से कोई भगवान को एक तुलसी दल भी अर्पित करता है तो भगवान उसको उसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बिना भाव के, भाव का अगर अभाव है किसी में तो उससे भगवान नहीं प्रसन्न होते। जैसे कोई बहुत सामग्री भगवान को अर्पित करता है, कोई करोड़ों रुपया भगवान को अर्पित करता है तो बोलते हैं हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए या उसका नाम लिखा जाए, तो उसका भाव अलग है, उसको नाम चाहता है कि भगवान को हम देखकर हमारा नाम होना चाहिए कि हमने इतना दिया है। लेकिन भक्त करता है तो उसका नित्य नैमित्तिक कर्म होता है, उसमें कोई स्पृहा नहीं होता है कि हमारा नाम हो, अपना उसमें उसका कोई हेतु नहीं होता है, अहेतु की वो भगवान को नित्य अपना कर्तव्य मानकर करता है। प्रतिदिन जो भी मिलता है भगवान को अर्पित करके सेवा करके तभी खाता है। आ कुछ लोग कभी कभी उत्सव में दान देते हैं या ये करते हैं, जैसे बड़े बड़े सेठ लोग कभी कभी मंदिरों में आकर सेवा करा जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है प्रतिदिन जो भी उसको जो भी वस्तु है उसमें भगवान को की सेवा करता है, वो अपना उसमें कोई नाम नहीं चाहता है, अपना उससे कोई स्व इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं रखता है। जैसे भक्त थे रामायण में, रामचरितमानस में एक भक्त का बहुत सुंदर इतिहास आता है कि वो प्रतिदिन भगवान की सेवा करते थे और जंगल में जाते थे, कंद मूल फल लेकर आते थे और भगवान की पूजा करते थे और भगवान को अर्पित करके भगवान को इसी ध्यान में रहते थे कि भगवान आएंगे अब उसको ग्रहण करेंगे, इंतजार करते थे। क्योंकि गुरुजी कहे कि देखो भगवान आएंगे तो उनको ये सब चीज प्रतिदिन भोग लगाना तब प्रसाद ग्रहण करना, तो प्रतिदिन भोग अर्पित करते थे गुरु के अनुपस्थिति में। गुरुजी कहीं यात्रा पर जा रहे थे तो अपने शिष्य को कहे कि आप जो है इस तरह से पूजा करना, भगवान को खिला करके तब खाना। तो गुरु के बताए हुए निर्देश में इस तरह से पूजा करते थे प्रतिदिन, जंगल से कंद मूल फल जो भी उपलब्ध होता था ला करके भगवान की सेवा करते थे और भगवान के प्रति दास्य भाव में कि अब भगवान आएंगे भोजन स्वीकार करेंगे। जब भगवान नहीं आते थे तो उनको बहुत मन में ये होता था, ग्लानी होती थी, आत्मग्लानी कि भगवान हमारी सेवा नहीं स्वीकार कर रहे। तो शाम को होता था तब पुष्प फल फूल को नदी में विसर्जित कर देते थे, फिर दूसरे दिन भी गुरु के आदेश का पालन करके जंगल से कंद मूल फल लाते थे, भगवान को अर्पित करते थे, फिर शाम को वैसे फल फूल वैसे रह जाता था, फिर नदी में विसर्जित करते थे। प्रतिदिन इस तरह की सेवा जो है बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक करते रहे, गुरु का आदेश था। यह नहीं सोचे कि गुरु जी बोल दिए होंगे ऐसे ही अब क्या भगवान कहाँ आएंगे, बाल 12 वर्ष के अवस्था से लेकर के 80 वर्ष की अवस्था बीत गई लेकिन गुरु के बात में उनको आस्था था, विश्वास था। गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु साधु शास्त्र वाक्य। वो भक्त कौन थे? वो भक्त सवरी, जो नवविधा भक्ति की आचार्य है सवरी, नव भक्ति की आचार्य है सवरी में भगवान राम स्वयं कहे कि तुम नव भक्ति की आचार्य हो। नौमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम कहे सबरी को कि तुम्हारी भक्ति नौ विधा प्रकार से दृढ़ है, नौ विधा भक्ति की आचार्य है सबरी। जैसे भागवतम में अम्बरीश महाराज नौ विधा भक्ति के आचार्य हैं, नौ विधा भक्ति करते थे प्रतिदिन। तो सबरी को मतंग मुनि कहे थे कि इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करो, प्रतिदिन सेवा करती थी बिना कोई शंका के, बिना कोई मन में कि अब थोड़े भगवान आएंगे, अब हो गया, अब रहने देती हूँ, बाद में जब आएंगे तो देखा जाएगा। ये वो प्रतिदिन करती थी। वृद्धावस्था में भी वो अपना नियम, भगवान को जो कंदमूल फल ले आना, आश्रम को सफाई करना करती थी सबरी, वृद्धावस्था में भी। उसके श्रद्धा भक्ति गुरु और भगवान में जो दृढ़ निष्ठा था, विश्वास था, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यह देखकर भगवान श्री राम उसके आश्रम में स्वयं आए और शबरी को वरदान दिया, आशीर्वाद प्रदान किए कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। इस तरह से वो यज्ञ संपन्न करती थी, भगवान को अर्पण करती थी। हमारे पास जो कुछ भी है, मानस देह गेह जे किछु मोर, कुछ नहीं है, तो भगवान को आप नाम के द्वारा पूजा कर सकते हैं कलियुग में। मान लीजिए आपके पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ नहीं है, तो नाम जप के द्वारा पूजा कर सकते हैं। सबरी यही करती थी, नाम जप करती थी, और जंगल में जो कुछ भी देव योग से जो फल फूल मिलता था वही लाकर अर्पित करती थी। तस्मा दैवो पपन्ने न, वो ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना है। भक्ति में जो कुछ भी आपको मिल जाता है उसी के द्वारा भगवान को सेवा करना है, और कुछ न भी मिले तो भी नाम के द्वारा भगवान की पूजा करनी। और कली युग में सबसे बड़ी पूजा है नाम संकीर्तन। जितने भी भक्ति के अंग हैं उसमें श्रेष्ठ है नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करना। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, जप करना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। जप करना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा त्याग है नाम जप करना। एक बार राधाकुंद महाराज कह रहे थे कि जप करना नियम पूर्वक यही सबसे बड़ा सिद्धि है। जप सिद्धि जप सिद्धि जप सिद्धि न संशय। लोग सोचते हैं कि अब जप कर रहे हैं केवल इसमें क्या होता है, कुछ और नया काम कर लेते, मतलब कभी कभी हम लोगों के मन भी होते केवल जप करने से क्या होता है। तो महाराज के नहीं, कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण ने यही आशीर्वाद दिया है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि नाम के द्वारा ही वो सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सारे अभीष्ट की पूर्ति नाम जप के द्वारा कर सकता है। जप सिद्धि जप सिद्धि जप सिद्धि न संशय, जप के द्वारा ही वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि युग में यही पूजा है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराध हैया जपे, और निरपराध होकर अगर कोई जप करता है तो कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्य नित्य ऐसे दिव्य कार्य करते हैं। क्या दिव्य कार्य करते हैं? नाम जप करना, भगवान के सामने नतमस्तक होना, जो है उसको अर्पित करना, ऐसे दिव्य कार्य करते हैं। अतएव हमारे इस आंदोलन में पशुओं के वध का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन में पशु वध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या जरूरत है? खाने के लिए क्या कमी है? क्या भागवत में कहा कि वृक्ष नहीं खाते हैं, वृक्ष भी खाते हैं। वृक्ष तो कोई उद्योग नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं। वृक्ष केवल एक जगह खड़ा है फिर भी वो भी खाता है। सुअर कुकर भी खाते हैं, पक्षी कहाँ कोई रोजगार करते हैं। पक्षी करे न चा करी, अजगर करे न चा करी, पंछी करे न काम, कहाँ पक्षी कोई रोजगार धंधा नहीं करते। लेकिन उसको भी देव योग से भोजन मिल जाता है। वृक्ष तो एक जगह खड़ा रहता है, वो भी खाता है। तरव किम न खादंती, ऐसे श्लोक है ना, तरव किम न खादंती किम ग्राम पशवो जना। गांव सुकर मतलब सुअर भी, उसको भी भोजन मिल जाता है देव योग से। यहाँ देव देव प्रपन्न न, देव योग से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मिलता ही है। किसी को एक रुपया मिलता है, किसी को एक लाख मिलता है, लेकिन जिसका कर्म रूपी कमंडल जितना बड़ा उतना मिलता है, उसी के द्वारा हम भगवान को पूजा कर सकते हैं। ये नहीं सोचेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो बंगला ही नहीं है, मेरे पास तो बड़ा मोटर कार, जो तुम्हारे पास है उसी के द्वारा जो वस्तु है आपके पास उसी से आप कर सकते हैं। अत्यधिक प्राप्त करके कोई नहीं कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे। कोई लोग भक्त लोग सोचते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा, बहुत पैसा कमाकर वृंदावन में एक आश्रम बनाकर तब भजन करूंगा। कोई कोई लोग कहते भी हैं कि हम भी भजन करेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, वृंदावन में एक आश्रम बनाकर तब करेंगे। वास्तव में वो भजन नहीं हो पाता है। जो वर्तमान हमारी जो स्थिति है उसी स्थिति में हम कर सकते हैं, जो है उसी में। और अत्यधिक होने पर तो मन और अधिक के लिए भागने लगता है। इस श्लोक में यही है कि जो आपके पास है उसी के द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा बहुत सरल है, कुछ नहीं है तो नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करना यही सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्ण। अब तो समय समाप्त हो गया है, तो एक एक कोई जिज्ञासा प्रश्न कर सकते हैं। महाराज राधारमण महाराज कल प्रवचन देंगे, तो आज मैं महाराज को कहा था कि आज भी करिए, तो बोले नहीं कल कल ही केवल करूंगा। गला उनका थोड़ा ये है। तो राधारमण महाराज बड़े विद्वान हैं और भागवत के और श्लोकों के बड़े साहित्यिक और बड़े बड़े आचार्यों के टीका के द्वारा इसका ये करते हैं। तो कल आप लोग महाराज के प्रवचन आप लोग सुनेंगे। मैं तो ऐसे ही तात्पर्य के अनुसार जो भी बोलने का प्रयास किया हूँ। कोई जिज्ञासा नहीं है ना आप लोगों का? ठीक है, यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।